أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے آج کے ہدف کو بھی پورا کرائے اور ایک ایک لفظ ہم سب کے دلوں پہ اتر جائے شروع کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر دور قرآن 2023 DQ 2023 آج اس میں سے ہم 23rd پارے کو کنٹینیو کریں گے سورۃ زمر سے بالکل آخری حصہ ہے پارے کا سورۃ زمر ترتیب کے اعتبار سے 39 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں 31 آیات ہیں اور یہی پھر آگے 24 پارے میں کنٹینیو کرے گی زمر کہتے ہیں ٹروپ کو گروپس جنت یا جہنم میں جانے والوں کے گروہوں کی بات ہے اگلے پارے میں آئے گی اور سورت کے اینڈ پہ آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین آیت نمبر 1-9 رکوع نمبر 15 اللہ غنی ہے لوگوں کی بندگی اور شکر گزاری کا محتاج نہیں یعنی نٹ شیل میں بند کر کے ایک ہی آیت میں پوری توحید کے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہاں تم اس کے بغیر نہیں جی سکتے اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب اور باحکمت کی طرف سے ہے یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت کرنا اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں اس جملے کو آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں اور آیت کا نمبر بھی لکھ لیں کئی جگہ آپ کو ریفرنس میں کام آئے گا آج بھی وہی جملہ جو مکہ والے بولتے تھے اپنے بتوں کے لیے کچھ ایسے لوگ بولتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو یہ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی کہہ دیتے ہیں تو کیا کہتے تھے کہ ہم ان سے تو نہیں مانگتے اصل میں تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں جیسے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے چھت پہ جانے والی اس قسم کی مثالیں بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن کا ترجمہ ہی عام کرنے والے بن جائیں یہ لوگ جس چیز میں یا جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کرے گا چھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا یعنی اتنی بڑی ہستی اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر انسانوں سے طلب کرنا چیزوں کو یہ ناشکری ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد کا ہی ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا لیکن وہ تو پاک ہے وہ وہی اللہ ہے یگانہ اور قوت والا نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے اور اسی نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے ہر ایک مقرر مدت تک چل رہا ہے یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اب دیکھ رہے ہیں کائنات کی نشانیاں اور اللہ کا مقام ساتھ ساتھ چل رہا ہے یعنی تم قرآن نہیں بھی ابھی تک پڑھ سکے تو کائنات میں روز و شب جو اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں جو اس کی قدرت کے کام ہیں ان کو دیکھ کر اس کو پہچان جو تو بات یہ ہے کہ اگر ماننا ہو تو دلیل اور ثبوت تو بہت ہے اللہ ہمیں ماننے والوں میں بنا دے اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے 3-3 اندھیروں میں یہی اللہ تمہارا رب ہے اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہک رہے ہو دنیا میں اگر کسی مصور کو آپ نے دیکھا ہو کہ تصویر بنانی ہو تو روشنی کا اہتمام ہوگا ماڈل ہوگا پتہ نہیں اسکیچز اور کیا کچھ دینا ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں بنتی ایسی تصویر کوئی نہ بنا سکا جو مسکرائے جو روئے جو محسوسات کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں میں وداؤٹ یوزنگ اینی واٹر اینی کلر اینی اسکیچ کوئی ماڈل نہیں چاہیے اور اندھیروں میں بناتا ہے اور ایک آنکھ دوسری آنکھ سے ذرا فرق نہیں کبھی اندھیرے میں آئی لائنر لگا کے چیک کیجئے گا روشنی میں بھی صحیح لگ جائے تو بڑی بات ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی ہے نا اور وہ آپ کی بے تکلف دوستیں بھی آپ کو کہیں گی ہیں اور دوسرے کہیں گے کہ شکر ہے بھینگے ہو گئے तीन अंधेरों में आपकी मेरी आंखें बनी है। जरा आज अपनी आंखों को जाकर देखिएगा, नाक को देखिए, एक नतना मोटा एक बड़ा, 19 से 20 का अलाइनमेंट होंठों में फर्क आ जाए ना तो चेहरा मायूब लगता है। कभी तो सोचे इंसान जो इतने अंधेरों में इतनी प्यारी शक्लें बना सकता है, क्या उससे मेरे अमाल छुपे हैं? नहीं। अगर तुम ना शुक्री करो तो याद रखो कि अल्लाह सबसे बेनियाज है, वो अपने बंदों की ना शुक्री से खुश नहीं, और अगर तुम शुक्र करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा। और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, फिर तुम सबका लौटना अपने रब ही की तरफ है। तुम्हें तो वो बतला देगा जो तुम करते थे, यकीनन वो दिलों की बातों का वाकिफ है। यानी क्या कोई सीसी कैमरा आपकी तस्वीरें बनाता है या आपको जानता है? जो अल्लाह ताला बनाता है उसकी तो मिसाल जैसी मिसाल भी कोई नहीं। और इंसान को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो खूब रुजू होकर अपने रब को पुकारता है। याद करें दुख का कोई लम्हा, कैसे उस वक़्त लगता है कि भीगी बिल्ली बनकर, मस्कीन बनकर अल्लाह को पुकारते हैं। कभी बच्चों के इम्तिहानों के दिनों में उनकी टोन देखा करें, मामा दुआ करें, अच्छा मामा मैं मस्जिद में मैं जा रहा हूँ पढ़ने, पेपर देने, आप जायनमाज़ भी चाह लें। और जब पेपर ख़त्म होते हैं तो फिर कौन होता है? फिर जब अल्लाह इसे अपने पास से नेमत अता फरमा देता है तो वो इससे पहले जो दुआ करता था इसे बिल्कुल ही भूल जाता है। कोई खुशी का लम्हा याद करें, जिस दिन मगरिब की नमाज़ कज़ा हो, क्योंकि वजू नहीं है, क्योंकि अब यहाँ कैसे पढ़ूँ, अब इन कपड़ों में कैसे पढ़ूँ, चुप करो जाके ईशा के साथ पढ़ लूँगी। इस आयत का नंबर लिख लें, शादियों में अपने साथ लिख के वजीफ़ा तवीज़ बना के जाया करें, पार्टियों में, अब ईद की पार्टियों में बहुत कुछ होना है, लिख के ले जाएँ। अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता बंदा जो सिर्फ आपको दुख की खबरें दे और अपने घर में दावत करे, पार्टी करे, शादी करे, आपको बुलाई ना, और पता तो आपको चल ही जाएगा। आप कहेंगे अच्छा जी आप ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास आते हैं, आपको ज़रूरतों पे बुला लें, ज़रा ना हेल्प कर जाना, ज़रा वो थालियाँ सजा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन रात शादी की में दावत में आपका नाम नहीं है। आती हैं हमारी वो दोस्तें मेहंदियों के थाल सजाने जिनको हमने दावत ना दी हो। तो अल्लाह ताला को हम क्या समझते हैं? मैं अक्सर सोचती हूँ अल्लाह तुझे हम क्या समझते हैं। ममा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अल्लाह की मार्फत मिल गई ना अगर आपको इस दौरे कुरान में, तो वो सारे फासले तय होते जाएंगे और वो माइल स्टोन तय होते हुए आप भी रज़ी अल्लाह अन्हुम के दर्जे पे इंशाल्लाह पहुँचेंगी। साहबा को बस ये पॉइंट समझ आ गया था, और हम इसको छोड़ के बाकी वजीफे, दुआएं, नमाजें, रोज़े, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी कदर की तौफीक अता फरमा दे। फरमाया कि इससे पहले जो दुआ करता था इसे बिल्कुल भूल जाता है और अल्लाह के शरीक मुकर्रर करने लगता है, जिससे औरों को भी इसकी राह से बहकाए। आप कह दीजिए अपने कुफर का फ़ायदा कुछ दिन और उठा लो, और आखिर में तो तुम दोज़खियों में होने वाले हो। भला जो शख्स रातों के औकात सजदे और क़याम की हालत में इबादत में गुजारता हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, और जिसके बरक्स हो बराबर हो सकते हैं? बताओ तो हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। फेमस आयत नोट कर ले, नंबर 9 सूरत, बोलिए ज़ुमर। हल यस्तविल्लज़ीन, क्या बराबर हैं इल्म वाले और बेइल्म? यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हो अपने रब की तरफ से। अब आप देखिए कि ये कौन सी रातें हैं, ये लैलतुल कदर ढूंढने की रातें हैं। मैं देखती हूँ लोग चुपके चुपके बाहर आसमान देख रहे होते हैं, फिर कहते हैं हवा चल रही है, आज बड़ी ठंडी रात है, सोतों को उठा, उठो उठो उठो, आज की रात है। कल की रात के बारे में बड़े लोग कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, अच्छा नहीं आज रात गर्म है, मैं जा रही हूँ सोने। मोमिन ऐसा सीजनल नहीं होता। चलिए एक जुमला लिख लें साहबा की शान में, साहबा और हमारे अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क क्या है कि हम सीजनल मुस्लिम्स हैं, वो 24/7 मुस्लिम थे। हम मौसमी नेक हैं, वो हमेशा के नेक थे। हम एक्सीडेंटली नेक हैं, हालात के मुकैद हैं। साहबा ने कभी जमा तफरीके करके नेकियां नहीं की थी, उनको पता था कि हम तो अपने रब के लिए कर रहे हैं, और वो रब के लिए सरफ से ज़्यादा अपने लिए करता है। याद रखे सूरह तौहा की आखिरी आयतों में हम ये बात पढ़ के आए, लाल्ला का तौर तो ए नबी उठ नमाज़ पढ़ ताकि तू खुश हो। हम कहते उठो नमाज़ पढ़ो अल्लाह खुश हो, गलत कहते हैं। पहले आप खुश होते हैं अपनी नेकी से, फिर दूसरा खुश होता है। देखिए आप खुशी से खाना बनाएंगे ना, क्योंकि लॉड ही बड़ा है, चाव ही बड़ा है किसी का आने का, वो मेहमान भी खुशी से खाएगा। आप मुंह बसोरते रोते धोते बैठ जाएं, आके कल से सोई नहीं, कल से बैठी नहीं, सुबह से थक गई, ये भी खा लो, ये भी खा लो, अगला कहेगा इतने बोतल दिल से इन्होंने पकाया, नहीं खाएगा। खाने में टेस्ट ही उस औरत के आता है जो दिल से पकाती है, नमक मिर्च मसाले सब कुछ वही होते हैं, कुछ भी ना डाले, इतना टेस्ट आएगा क्योंकि आपने प्यार से बनाया। बस हमारी नेकियां, ये आपका मेरा ये काम, आपका मेरा यहाँ आके बैठना, हमारा इसके लिए निकलना, ये दिखाता है कि हम कितनी मोहब्बत से आए हैं। और आपको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है, जिस चीज़ की आप चाहत रखते हैं ना, आप उसके लिए दिल की खुशी से तैयार होते हैं, आप उसके लिए इख्तमाम करते हैं, आप उस पर पैसा खर्च करते हैं, आप उसके लिए वक्त की कोई कैद का ख्याल नहीं करते कि ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस शादी में होनी है ये कितने घंटे की होनी है। वहाँ कोई नहीं कहता हाय 3 घंटे, 8 बजे कार्ड पे लिखते हैं, 10 बजे निकलते हैं घर से, 10:15 पहुँचते हैं, खाना मिलता है जाके 12-1 बजे, घर आने तक आप आधी रात गुजार चुके, पता चला 5-6 घंटे लग गए एक शादी में, कोई नहीं कहता। और हम 5 घंटे में 2 पारे पढ़ ले, 3 पारे पढ़ ले, 4 पढ़ ले। सोचा करें मेरा दिल है कि नहीं। नमाजें शौक की, वो कहते हैं इश्क के सजदे करो, मोहब्बत के सजदे करो, ये क्या रोते धोते सजके, 2 नफिल बराए अब्बा जान, 2 नफिल बराए अम्मी जान, 2 नफिल बराए लैलतुल कदर, 2 नफिल बराए रमज़ान तौरा कुरान 23, ये रोते धोते काम नहीं अच्छे लगते। चीयरफुल मोड में बैठा करें, आपको ऐसे लगे कि आप दुनिया में सबसे खुशकिस्मत है, मैं सबसे अच्छा काम करने जा रही हूँ, और आपके एक एक एक्शन से ये दिखेगा। कोई हमारे घर आता है, हम उसको इज्जत देते हैं ना, उसके लिए हम तैयार होते हैं। हम किसी के घर जाते हैं, हम उसको इज्जत देते हैं, हम उसके लिए तैयार होते हैं। शादियों को तो बहुत ही इज्जत देते हैं माशाल्लाह, इज्जत के आला तरीन मुकाम पर खड़ा करते हैं, सर से पाँव तक तैयार होते हैं। ये चीज़ आप अपने आप को चेक किया करें। एक खातून, नाम मुझे याद नहीं है, तारीख की कोई खातून है, अपनी शादी का जोड़ा पहनती थी रोज़ रात को तहज्जुद में जाने के लिए। जो भी होंगी, नामों से क्या होता है, बात सच है कि नहीं, लेकिन बात यह है कि मोहब्बत के सजदे, इश्क की नमाज़ें लोग कहते हैं पढ़ो, मैं तो नहीं लफ्ज़ इश्क बोलती, लेकिन हकीकत है, हमारे चौ चौ से पता चल जाता है कि अभी किससे प्यार है। और ये इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर कैसे हों, दोनों अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक जानता है एक नहीं जानता, एक अनजान है एक नहीं जानता, एक की तरफ लोगों की नज़रें लगी हुई हैं, दूसरे की तरफ कोई जान देखता भी नहीं, एक रोल मॉडल है दूसरा नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप इल्म लेकर वैसे हो जाएं जैसे सब, मैं अब क्या करें ना, फिर बच्चे नहीं मानते, फिर क्या करें ख़ानदान का मसला, क्या करूँ ससुराल का इशू, नेवर नेवर। इल्म अपनी शान खुद बनाता है, दुनिया के किसी भी चुंगल में फंसे हों, इल्म वाले का नाम काम, उसका हर मुकाम अलग होता है। क्या पता चला, देखिए दीन को खालिस करने वाले सहाबा कराम थे, इनका हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होता था, इनकी कौली फेली माली बदनी इबादत इखलास पर मबनी थी। और हम हर नमाज में कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाह, ये क्या किया आपने, अत्तहियातु लिल्लाह, ये 4 लफ्ज़ होते हैं तहिये में, कौली फेली माली बदनी इबादत अल्लाह तेरे लिए। और बाद में न जाने हम क्या कुछ करने लगते हैं। फिर सहाबा किराम की कुछ मज़ीद खूबियाँ जो हमें इन आयात में दिखी, वो मती और फरमा बरदार थे, रातों को रुकू और सजूद करने वाले थे। याद कर लें, अब हज़रत अबू हुरैरा का किस्सा सुना चुकी हैं आपको, पूरी रात में कोई ना कोई उनके घर में खड़ा कुरान पढ़ता था, रब की रहमत के उम्मीदवार थे, आखरत से डरने वाले थे, हमने भी ये सब कुछ करना है, इसके अलावा दीन को खालिस करना है अल्लाह के लिए, यानी बस सच्चे हो जाएं, खड़े हो जाएं। जिस बंदे पे शक हो ना, सारी ज़िंदगी आपके साथ रह लेगा, आपका दिल नहीं खुलेगा उसके लिए। और जो अपना बन जाए, घर की चाबियाँ उसके पास, गाड़ियों की चाबियाँ उस पर, जेवरात उसके पास, आपका बेबी उसके पास, चलो मैं सोने लगी इसको ले लो, एक दफ़ा रब के बन के दिखा दे, अल्लाह आपसे बहुत कुछ नहीं मांगेगा। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोह कलम भी तेरे हैं, तकदीर के फैसले अल्लाह पूछ कर लेता कि बता तुझे पसंद क्या। देखिए ना, एक होता है देना लेना, आप दे देते हैं, बल्कि कुछ तो कहते वो लेने देने वाले जोड़े दिखाइए, आप सबको बताइए कौन से होते हैं, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये लेने देने के जोड़े हैं, एक ये किसी को देना लाए लेके दे दिया, और ये कैसे होता है, आप कहते हैं आप बताएं आपको क्या चाहिए। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी माँ से कहती है ना, बीवी शौहर से कहती है इस दफ़ा तो मैं अपनी पसंद का जोड़ा लूँगी, और हर दफ़ा कहती है भी भूल जाती है, वो कहता है बेगम आप पिछले साल भी यही कहती थी, आपने तो मुझे कभी दिलाया ही नहीं, अच्छा इस दफ़ा बादाम खिलाऊंगा ताकि आपकी याददाश्त ठीक रहे। हमारा मामला है जिससे जितना ताल्लुक प्यार, आप कहते हैं मैं उसकी पसंद का दूंगा ताकि ज़ाया ना हो, ताकि वो पहन ले, ताकि वो इस्तेमाल कर ले, ताकि वो बोझ ना हो उसके ऊपर। ये जो आपका मेरा अल्लाह के साथ खालिस होना है ना, असल में फिर अल्लाह भी आपकी तरफ तवज्जो करता है कि सबको तो दूंगा जो मैं चाहूँगा, तू बता तुझे क्या चाहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यही है जन्नत का फल, वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम। आगे भी अगले पारे में भी आ रही आयतें, वलकुम फीहा मा तदउन। क्या ऑर्डर करते हैं आप, ऑर्डर कीजिए। क्या मांगते हैं, मांगिए। और वो बड़े बादशाहों का एक जुमला हम बचपन में कहानियों में पढ़ते थे, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सल तोता, अल्लाह कहता है, रोज़ कहता है, सल सवाल करो तो तब तो दिया जाएगा। तो ये जो दुनिया में भी अल्लाह से आप लेते हैं ना, ये भी कोई ऐसे नहीं मिल जाता। हमने हज़रत सुलेमान का किस्सा पढ़ा ना, एक तो उनको दिया बहुत अल्लाह ने, दूसरा उन्होंने कहा था कि वो मिले जिस पर हिसाब ना हो। हम सब का हिसाब है, इसका ख़तरा तो है ना, हज़रत सुलेमान का हिसाब नहीं होगा। मैं सोच रही थी ये कौन बंदा जिसका हिसाब नहीं है, जिसके पल्ले दमड़ी भी नहीं है, उसका हिसाब नहीं होगा ना, अल्लाह खुद ही उसके लिए दे देता। नहीं समझे आप, घर दूसरों का, फ़ायदा आपको आता है, गाड़ी दूसरों की, बिल तो नहीं देते आप बिजली का, पानी का, गैस का। ये है जो अल्लाह के वादे हम अभी तक नहीं समझे। 19-20 का फ़र्क क्या, मैं कहती हूँ बंदे की वो औकात नहीं, बंदे को वो चीज़ मिल जाती है। हम अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से वो नहीं कमा सकते जो अल्लाह अपने रास्तों में खालिस होकर बंदे को अता करता है। तो लिहाजा इखलास बड़ी दौलत है। इसके साथ तो दुनिया की चाबियां अल्लाह ने कहना, जो जिधर जिधर अपना नाम लिखना लिख के दे दो, फरिश्तों को कहना इसको सेट कर दो इसके लिए। की बात है, ये 100% मुजर्रब नुस्खा है। इखलास के आगे कोई चीज़ नहीं टिकती, शैतान भाग जाता है दुम दबा के। बाकी क्या है, फिर नेमत मिलने पर आपको भूल नहीं जाना। मसला ये असल में, नेमत इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नेमत के बाद का एटीट्यूड इज़ अ प्रॉब्लम। फिर मती फरमान होना है, रब की रहमत से उम्मीद रखनी है, रब की घड़ियों में सजदे करने हैं। रुकू नंबर 16:10-21, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से डरना चाहिए। कुल या इबादी अल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, कह दो के मेरे ईमान वाले बंदो। देखिए प्यार कितना अल्लाह को आपसे, मेरे मेरी ईमान वाली बंदियों। हमें एक दूसरे को नेकी करता देकर कितना प्यार आता है, तो सोचे अल्लाह को कितना आता होगा। माँ को जो बच्चे से प्यार हो सकता है, दुनिया में किसी को नहीं हो सकता। दूसरे भी लाड़ करते हैं, पप्पू गुड्डू डुड्डू बुब्बू रुला रुलू के छोड़ देते हैं, और माँ तो उस राल टपकाते बच्चे का भी मुंह चूम रही होती है। अल्लाह की बंदे, अल्लाह का प्यार महसूस कीजिए। अब पारे ख़त्म होने वाले हैं, मेरा दिल उदास हो रहा है, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं ख़त्म करूँ। आपके लिए करती हूँ ख़त्म, मैं तो ना कभी दौरे कुरान में कभी ख़त्म ना करूँ, लेकिन ख़त्म अल्लाह शायद इसलिए करवाता है कि आपका नया सिलसिला शुरू हो। दुआ करें हम महरूम ना रहें। ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, अपने रब से डरते रहो। जो इस दुनिया में नेकी करते हैं, इनके लिए नेक बदला है, और अल्लाह की ज़मीन बहुत कुशादा है। जवाब आ गया, ज़मीन बड़ी खुली है, काम करने वालों के लिए राहें बहुत हैं, जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए। सब्र करने वाले को ही इनका पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाता है। ये बात करते हुए मुझे एक बात याद आई, तो सुना देती हूँ कि मैं ऐसी बहुत पुरानी बातें सुन रही, तो उन्होंने कहा कि रमज़ान में ना चांद की तरह, जैसे चांद शुरू में छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर भीड़ घटता है ना, तो लोगों की नमाजों में तादाद भी कम ज़्यादा हो जाती है। तरावियों में मस्जिदें शुरू में बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 5-6 दिन गुजर जाते हैं, फिर हमें कमज़ोरियाँ लाहक होती हैं, फिर कम होती हैं, फिर जब वो मिड आने लगता है तो फिर बढ़ते हैं, फिर सुस्ती, और फिर आखिरी रातों में फिर खड़े हो जाते हैं ना, चांद की तरह कम और ज़्यादा होता है ना। तो अक्सर आप देखिए कि कुरान क्लासेस, जैसे दौरे कुरान है, और या आप कह लें कि कहीं भी कोई इल्मी हल्के हो रहे हैं, दौरे तफसीर हो रहे हैं ना, तो मैं रात को एक जगह थी, तो मैं सोच रही थी कि कितने हैं वो लोग जो शुरू से लेकर एंड तक अपना इंटरेस्ट कायम रखें, पारे के शुरू में जब जिस फ्रेश मोड पे बैठते हैं, एंड पे भी उसी मोड में हो, और शुरू के पारों में जितना जोश जज्बा था, आखिर में भी उतना ही हो, और कोर्स के शुरू में जो जोश जज्बे थे, लेते देते नई कापी खरीदी, नई पेंसिलें खरीदी, नए रबड़ खरीदे, नए जोड़े खरीदे, जी नया कोर्स शुरू करें, कोर्स के एंड पे 28वें 29वें 30वें 12वें तक वही शौक है। तो मैं ना इंजॉय कर रही थी कि अल्लाह हमें उन लोगों में कर दे। एक आयत भी कल क़यामत के दिन मुझे ना कह दे कि अल्लाह इसने जल्दी में पढ़ के जान छुड़ा ली थी मुझसे। अपना शौक़ ना ख़त्म करें। आगे सुनते हैं आयत 12, आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह तआला की इस तरह इबादत करूं, कि इसी के लिए इबादत को खालिस करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बन जाऊं। कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अजाब का खौफ लगता है। ये जुमला आपने पीछे पढ़ा है सूरह अल-अनाम में, तब भी मैंने जिक्र किया था, आज फिर लिख लें। तब आपका कुरान का इब्तदाई सफ़र था, अब इंतहा, मेरा लिए एक ही रेशो बन रहा है, उधर भी को 7.5 पा रहे थे, 7, 7.5, और इधर भी को उसी के करीब हैं हम। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम्हें ये जुमला बोलना आ गया है लोगों की टेम्पटेशंस पे, लोगों के तुम्हें फोर्स करने पे, तुम्हें मासे करने पे, तो फिर तुम बच गए हो। ये जुमला पता क्या है? जब कोई आपको किसी गलत काम पे माइल करे, मजबूर करे, फोर्स करे, पुश करे, तो आपने कहना कि मुझे तो अपने रब का डर लग रहा है कि मैं नाफरमानी करूँ, मैं नमक हरामी करूँ। कह दीजिए कि मैं तो खालिस करके सिर्फ अपने रब ही की इबादत करता हूँ। सूरह ज़ुमर है ना इखलास वाली, बिल्कुल मांझ के रख देगी आपको इंशाल्लाह ये सूरत। सिर्फ तर्जमे कोई गौर से सुनते जाए तब भी, तुम इसके सिवा जिसकी चाहो इबादत करते रहो। कह दीजिए कि हकीकी नुकसान वाले तो वो हैं जो अपने आप को और अपने अहल को क़यामत के दिन नुकसान में डाल देंगे। हाईलाइट करें कि मैं अपने घर वालों को आग में ले जाने का जरिया तो नहीं बन रही, और क्या मैं अपनी बीवी को मजबूर तो नहीं करता कि वो बेपर्दा होकर मेरे साथ जाए तो कल वो मेरी वजह से जहन्नुम में जाए। ये बड़ी अहम आयत है, आगे भी आएगी एक और अगले पारों में, कि हासिर अल्लाह बैंक करप्ट हो गए वो लोग जिन्होंने खुद को और अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। याद रखो कि खुल्लम खुला नुकसान यही है, इन्हें नीचे ऊपर से आग के शोले मिसल साए बांध के ढांक रहे होंगे। यही अजाब है जिनसे अल्लाह अपने बंदों को डरा रहा है। ऐ मेरे बंदो बस मुझसे डरते रहो। सूरत मायदा में आपने बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ा था, या इबाद मेरे बंदे, मेरे बंदे। कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं, नथिंग, ओनली बंदे। और अल्लाह को अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा का प्यार है, जो रिवायात आप सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो हमें भी अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करनी है। और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से परहेज़ किया और हमतन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, वो खुशखबरी के मुस्तहिक हैं। मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो बात को कान लगाकर सुनते हैं। कितने कान लगाकर आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, सब कान लगाकर सुनने वालों को अल्लाह ये खुशखबरी दे रहा है। क्या फिर जो बेहतरीन बात हो इस पर अमल करते हैं, यही है जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की और यही अक्लमंद भी हैं। भला जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो चुकी है तो क्या आप उसे जो दोजख में है छुड़ा सकते हैं? जवाब नो। अधूरे जुमले, हाफ ट्रुथ, छोटी छोटी बातें, जवाब खुद सोचो। हाँ, वो लोग जो अपने रब से डरते हैं इनके लिए बाला खाने हैं, जिनके ऊपर भी बने बनाए बाला खाने हैं और इनके नीचे भी नहरें बह रही हैं, यानी हाई राई हाई फाई किस्म की बिल्डिंग्स। रब का वादा है और वो वादा खिलाफी नहीं करता। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला आसमान से पानी उतारता है और इसे ज़मीन की सूतों यानी गहराई तक पहुँचा देता है, फिर इसी के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियाँ उगाता है, फिर वो खुश्क हो जाती हैं और आप इन्हें जर्द रंग में देखते हैं, फिर इन्हें रेजा रेजा कर देता है। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत ज़्यादा नसीहत है। ये क्या है? आपका मेरा लाइफ स्पैन, बचपन, जवानी, जवानी में खूबसूरती, ऐसे बंदा खिला खिला पड़ता है, हर चीज़ सजती है, और फिर 40+ झुरियाँ, हल्के 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 हल्के, और फिर 50+ में स्किन खुश्क, पिपड़ियाँ बन गई, हल्के पड़ गए, और 60+ में तो चूरा चूरा हो के बंदा रुला होता है। कभी अपने बूढ़ों की झुरियों को गिनिएगा बैठ के, कभी बूढ़े लोगों के हाथों को पकड़ के ना हाथ में, तो जितनी गिन सके उनकी रिंकल्स गिनिए। ये है दुनिया। तो देखिएगा ईमान वालों को इनायात में जो अहकामात मिले, अपने रब से डरो, एहसन अमल करो, सब्र का दामन थामे रहो, दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, तौहीद पे कायम रहो। यहाँ चूँकि बाला खानों की बात है तो हदीस सुन लीजिए, हज़रत अली रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में ऐसे कमरे हैं जिसका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नज़र आएगा, ट्रांसपेरेंट। आज इसको हम क्या कहते हैं बता आपको? सनरूफ। अब दुनिया का सनरूफ तो यूके में बहुत बन रहा है, क्योंकि घर छोटे होते हैं तो वो एक्सटेंशन की इजाज़त लेके बेचारे उसको शीशे से रखते हैं और बड़ा खूबसूरत बन जाता है, घर में एक रोशनी भी आ जाती है, दिल चाहे तो खोल लिया नहीं तो बंद किया। अब जन्नत के सनरूफ क्या हैं, वो क्रिस्टल की दीवारें हैं, वो क्या है, वी डोंट नो, बस सोच सकते हैं। एक देहाती ने खड़े होकर अरज किया, अल्लाह के रसूल जी किन लोगों के लिए होंगे? अच्छा, साहबा में से देखिए ये देहाती है, कम पढ़ा लिखा, इस तक ने ये नहीं पूछी डिटेल हमारी तरह, कहाँ से बनेगा, क्या होगा, वो किस कंपनी का, उसका रंग क्या है, पीला नीला शीला कीला, नहीं, करना क्या पड़ेगा, दैट इज़ द पॉइंट। और ये कई जगह पीछे भी आई थी बात, यदि साहबा की नज़र इस पे होती थी, जल्दी जल्दी बताएं हम क्या करें कि हमें ये मिल जाए, हम क्या कहते हैं वो मोती का होगा, नीला होगा, पीला होगा, लाल होगा, उसमें जोड़ तो नहीं होगा, उसमें ये तो नहीं, वो नहीं होगा। भाई आप अपने हिस्से का काम करें, अल्लाह को उसके सिवा करने दे, जो भी मिला हमें क्या, हमें तो मुफ्त में मिल रहा, हमारी नेकियां तो इस काबिल है ही नहीं कि हमें वो मिले। तो जवाब भी सुन लीजिए, आपने फरमाया ये उसके लिए होंगे, अब ये मेरे आपके लिए लिस्ट है, जो अच्छी गुफ्तगू करे दोस्तों से, सहेलियों से के, बच्चों से भी, शौहर से भी, ससुरालियों से भी, नौकरों से भी, अपने से कम दर्जे के गरीब लोगों से भी, जिनसे पसीने की बू आ रही है उनसे भी, वो पता नहीं कितनी बसें बदल कर आए, पसीने की बू आ गई तो आपका क्या गया, यानी हर एक से कुलु लिन्नासी हुस्ना। फिर खाना खिलाए किसको, दावत में, वलीमे की दावत, 1,000 बंदे की, पीसी में, शेरेटन में, रीजन प्लाजा में, नहीं अल्लाह के लिए खिलाए। और फिर पाबंदी से रोजे रखे, और जब लोग सो रहे हों तो अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़े रात में। कौन करेगा ये काम, जिसको पता है कि वो देख रहा है जिसके लिए कर रहा हूँ। ये है रिवायत तिर्मिजी की 2527। हमने ये सब कुछ भी करना है, खौलनाक दिन के अजाब से भी डरना है, अल्लाह की फरमानी करनी है, दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इबादत करनी है, तागूत से बचना है, बात को गौर से सुनना है, बेहतरीन बात की पैरवी करनी है। इसके बाद पारे का आखिरी रुकू है रुकू नंबर 17, 22 से 31, 22 से 31। रोशन दलाइल पर वही ईमान लाएगा जिसकी फितरत का नूर जिंदा है। अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है। दुआ करें ये हम हों, ये मैं हूँ, बस वो अपने परवरदिगार की तरफ से एक नूर पर है, और हलाकत है इन पर जिनके दिल याद इलाही से असर नहीं लेते बल्कि सख्त हो गए हैं, ये लोग सरीख गुमराही में मुबतला हैं। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल कलाम, क्या अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है, जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती जुलती और बार बार दोहराई हुई आयतों की है, जिससे इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं। सोचिए इन 23 पारों में कितनी दफ़ा गूज़बाम्प्स हुए, कितनी दफ़ा रोंगटे खड़े हुए, आखिर में इनके जिस्म और दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नरम हो जाते हैं। क्या दिल नरम हुआ हमारा, ये है अल्लाह की हिदायत जिसके ज़रिए जिसे चाहे राह रास्त पर लगा देता है और जिसे अल्लाह तआला ही राह बुला दे, इसका कोई हादी नहीं। भला जो शख्स क़यामत के दिन के बदतरीन अजाब की ढाल अपने मुंह को बनाएगा, ऐसे जालिमों से कहा जाएगा अपने किए का बवाल चखो, इनसे पहले वालों ने भी झुटलाया, फिर इन पर वहाँ से अजाब आ पड़ा जहाँ से इनको ख्याल भी न था, और अल्लाह तआला ने इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में भी रसवाई का मज़ा चखाया, और अभी आखरत का तो बड़ा भारी अजाब है, काश कि ये लोग समझ लें। और यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान कर दी हैं, क्या अजब कि वो नसीहत हासिल करें, अल्लाह हमें नसीहत लेने वालों में डाल दे। कुरान है अरबी में जिसमें कोई कजी नहीं, हो सकता है कि वो परहेजगारी इख्तियार कर लें, शर्त एक है कि समझ आ रहा हो। अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमा रहा है, एक वो शख्स जिस पे बहुत से बाहम जिद रखने वाले साथी हैं, और दूसरा वो शख्स जो सिर्फ एक ही का गुलाम है, क्या ये दोनों सिफत में यकसां हैं। अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ है, बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग समझते नहीं। यकीनन खुदा आपको भी मौत आएगी और ये सब भी मरने वाले हैं, फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने रब के सामने झगड़ोगे। यह आयत भी अकीदे की इसलाह की आयत है। बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी के लिए लफ्ज़ मौत बोलना बेइज्जती है, उनकी गुस्ताखी है, कितने मुकाम में, और यहाँ तो लफ्ज़ इन्ना का है, यू सामने रखे हुए शख्स के लिए बात होती है ना, तो याद रखिए कि मौत में इंसान की कोई बेइज्जती नहीं है, जो काम आपके इख्तियार में नहीं उसमें इज्जत और बेइज्जती की बात क्या है। तो बहरहाल क्या सीखा, इस्लाम के लिए मेरा सीना खुल जाए ये दुआ करनी है, कुरान पाक की मिसालों से नसीहत लेनी है, दिल का नसीहत सुनकर नरम हो जाना इसलिए नसीहत को सुनना है, आखिरत के अजाब के बारे में जानना है, किताबुल्लाह सुनकर रोंगटे खड़े ना भी हो तो डरने की कैफियत महसूस करनी है, और अल्लाह ताला की याद की तरफ माइल होना है। पारा पूरा हुआ, पैगाम क्या है, दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लें, झूठ और नाशुक्री से बचना है, और दुनिया बहुत जल्द फना होने वाली है, लिहाजा बाकी रहने वाली को पकड़कर ख़त्म होने वाली से दिल को दूर करना है, अल्लाह आपके मेरे लिए आसान करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह, पारा पूरा हुआ।